ऐसे सब शक्तियों का जैसे कि सुदेवी और रंग देवी का
और
भक्ति से बंधन में आए, भक्ति के द्वारा बांधे गए और भक्ति के द्वारा स्वयं ही बंध गए। दोनों बातें हैं, किंतु भक्ति के द्वारा कौन सी भक्ति? ब्रज की प्रेमोमयी भक्ति के द्वारा बांधे। तो कैसे? कृष्ण को जब उन्होंने बांध दिया, कृष्ण बड़े रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। मैया ने नहीं छोड़ा, बांध दिया। बांधने के बाद में बच्चे वहां पर एकत्र हो गए। आप
स्वयं बंधन में, स्वयं बंधन में आए और बांध दिए।
कैसे बंधे?
वो रो रहे हैं बहुत जोर।
वो रो रहे हैं। आज यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया। कैसे बांधा? पहले कृष्ण की कमर को बांधा, एक बार पिटा लगा करके ऐसे गांठ लगा दी, और फिर गांठ से उथर वाला उदाहरण निकाल करके फिर उखल को बांधा पीछे से, और पीछे से बांध करके ऐसे गांठ दी जो कृष्ण का हाथ वहां पर न पहुंच सके, अपने पीठ तक पहुंच सकता है, क्योंकि ओखल द्वारा मोही, इसलिए ओखल को पार करके जहां पर बांध तो लगा है गांठ, तीन चार गांठ अच्छी तरह से दे दी खूब जोर से, फुल रस ऐसा। ये बड़ा ढीठ लग रहा है, भारी ढीठ, কখন যে কি করে এখন তাকে যে আমি মারতে যাচ্ছিলাম, যদি ছেড়ে দিই তাহলে বাড়ি থেকে কোথাও পালিয়ে যাবে, ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের নিকটে হয়তো যমুনাতে না লাফিয়ে পড়ে, যমুনা মনে করতে তিনে দশ রক্ত আমি বাঁধ করতে রক্ত দেঙ্গে, যারা শান্ত হয়ে যায়গা তো সে খোল করতে আপনার স্থান সে দুধ পিলায়েঙ্গে, শান্ত হয়ে যায়গা ভুল যায়গা, ইসলিয়ে যে কই ভাগ ভাগ করতে इतने में वहां दाम श्रीदाम सुबल मंगल सो कृष्ण लमंगो उद्गत सुबल सखा मंगल कोकिल भेंग सब सखा दूध राम नंगे दड़ंगे जूट गए वहां सनत सनंदन सनत कुमार की भांति, और सभी कृष्ण को रोता हुआ देख करके ताली बजा करके हंसने लगे, क्योंकि मैया जब तक थी तब तक दूर खड़े थे, निकट में कोई डर तुम्हारे आज नहीं आया। सुनते जसोदा मैया जब उनको बांध करके चलने लगी तो उनको बुलाया, जा रही हूँ घर के काम में, और ये बांध कर रखा है यहीं पर रखना है, इसको पारा देना,
सखाओं को बोला,
सखाओं को बच्चों को बोला, और उनको देख करके मन तो वहीं पर आ गया कृष्ण के यहाँ, और वो घर के दूसरे कामों के लिए अभी घर में झाड़ू नहीं दिया, दधि मंथन नहीं हुआ, अभी रसोई का काम भी कुछ नहीं हुआ, और रोहिणी मैया भी उसी के साथ में अभी लगी हुई है, इसलिए घर के काम से निपटने के लिए चले, किंतु मन नहीं था, शरीर के बात गया, मौन गए लोग, शरीर मौन का उत्तर था कृष्ण ने, हाय हम की खराब कर दो अनुताप के भीतर, তখন ছেলেরা নিকটে এসে আর তালি বাজিয়ে দিয়ে আর কৃষ্ণকে ও চিড়াইতে লাগলো, চিড়াইতে উনকো
उपहास करने लगे, उपहास करते रहे, ताली बजाया और करेगा। इस तरह से चिढ़ाने, अब कृष्ण उनके चिढ़ाने से वो भी हंसने लगे। अब धीरे धीरे आंख में आंसू आना तो नया बंद हो गया, किंतु वो कारण समेत जो था वो सूखा यहां पर अब बंद हो गया। कहां से
आपको तो नहीं लग
रहा। तो बच्चे कृष्ण को चिढ़ाने लगे, ताली बजाने लगे और कृष्ण भी हंसने लगे। अब तक तो रो रहे थे, किंतु यशोदा मैया के जाने से वो बच्चे हंसने लगे तो कृष्ण भी हंसने लगे। किंतु यहां से यहां तक सारा काला पड़ा हुआ है। इसके बाद में इतने में बलदेव प्रभु आ गए। बलदेव प्रभु कहां थे?
उपानंद प्रभु के घर,
उपानंद जी के घर में वो आ गए। उनकी मैया भी उनके साथ में गई थी, रोहिणी मैया भी इतने वो आ गए। बलदेव जी जब आए तो कृष्ण को बता हुआ देखा और रोने का चिन्ह देखा। अभी आंखों के आंसू काले सूख नहीं पाए थे, अभी कालो आंसू बुली अभी सूखे नहीं, किंतु कन्ना का बंद गया। कृष्ण बलदेव देखे कृष्ण के सुखा गए, कैसे जिज्ञासा किया भैया को, भैया को कौन बांधा, कौन बांधा, किसी के कान में पूछा, मधमंगल से, सिद्धाम से या किसी सखा से। तो एक बार पूछने पर वो तो डर रहे थे, यशोदा मैया का नाम नहीं लेना चाहते थे डर के मारे। ये डर किस चीज का? प्रेम का डर, इसलिए कुछ नाम नहीं लेना चाहे। किंतु जब हम बार बार बुलाते तब हम सिद्धाम अथवा जय के हो सुबह बलदेव कान से बोल लो, उनके कान में जा करके कहा, क्या कहा? अरे मां को सुधा दे, मां से सुधा नाम ले लेंगे मैया ने पास। तो वो जब तम कमाए थे, यदि कोई बांधा होगा तो हमको उसको दुष्ट कर, हमारे कन्हैया को कोई बांध, और वैसे बलशाली भी थे छोटी उम्र होने पर, किंतु मैया के नाम से नहीं, उनका सारा जो डर गया, कुछ नहीं बोल सकते। प्रेम ही एक ऐसा चीज है। ये बलदेव जी को जो यशोदा ने अधिक प्यार करती थी कृष्ण से, और रोहिणी मैया किसको अधिक प्यार करती थी? कृष्ण को अधिक प्यार करती थी। यशोदा जी का प्रेम दोनों पर स्नेह बराबर था, किंतु होने पर भी बलदेव को अधिक ऊपर से स्नेह दिखाया, और रोहिणी का सचमुच में कृष्ण के ऊपर भी अधिक प्यार था। यशोदा मैया का नाम सुन करके बलदेव जी शांत हो, मधमंगल करता हुआ है करता हुआ वहां पर उपस्थित हुआ, और उपस्थित होकर के जो जबरदस्ती वो खोलने के लिए गया, हम खोल देंगे। जब वो खोलने के लिए गया तो इतना जबरदस्त गांठ खोल नहीं सका, इतने दूसरे लड़के उसको धतिया कर धक्का देकर, अरे मैं तो काम तुम नहीं। तीसरे चौथे पांचवे सभी डूब करके एक दूसरे को हटाने लगे और खुलने की कोई नहीं खुल सकता। बात्सल्य रस का गांठ वाला सख्य और दास खोल सकते हैं, ये कभी नहीं सकता, ये संभव इस गांठ को दो ही खोलने में समर्थ हो, या तो बात्सल्य रस का की जो मूर्ति है वही आए, चाहे नंद चाहे यशोदा चाहे गोपियां, तो गोपियां वहां पर नहीं आई। इसलिए
देव की वसुदेव भी नहीं खोल सकते,
नहीं खोल सकते, कोई नहीं, रुक्मणी शतमा भी नहीं खोल सकते, ये लोग सब खोलने जाते बलदेव जी भी नहीं खोले, वो भी नहीं खोले। इसके बाद में कोई भी नहीं खोल सका, सब एक दूसरे को इधर से हटा रहे हैं, खोल रहे हैं, मैं खोलूंगा, सभी लोग मिल करके खोलने लगे। इतने में कृष्ण को ये याद आए, याद आए
नारुति का, मोना बोल लो,
उनको याद तेवर्षी में प्रियतमो जतिमो धनदात्रयो तत्तथा साधिष्यं जगीतम तत्मा। कृष्ण यहां मधुर लीला में व्यस्त है, किंतु उनको याद आ गई, अरे भाई जब तक तेरे आजकल की लीला हो, यदि कृष्ण गोपियों के साथ में 24 घंटा व्यस्त हैं, उनके साथ में विलास है, और कहीं पर कोई भक्त यदि कृष्ण की आराधना थर्ड क्लास का भी, दास का भी, यानी जगत का भी कोई भक्त प्रार्थना, हे कृष्ण करुणा दीन बन जगत पति गोपेश गोपिका आराधा अथवा उसी समय में जिस समय कृष्ण रासलीला में व्यस्त है और गज और ग्राम में युद्ध हुआ और ग्राम ने गज को पकड़ लिया और उस समय में गज हाथी पुकार, हे क्या,
हे गोविंद,
हे गोविंद राम
शरणम,
अब तो जीवन है, हे गोविंद आमी आमाके रक्षा कर, आमी संपूर्ण अपना रूप ले, आ कृष्ण रास करछे सुनबेन कि ना सुनबेन, सुनबेन कि ना, किंतु सुने रूप उतनी की कर रहे, तार भीतरे ते बहु लोग आछे, नारायण नचन करा प्राणाम दिशाई थी वो दिशाई बामन नारायण राम ऋषिंह कौकी बामन कोटि कोटि अवतार तार की करे, जहाँ का मैं संबंधित न फिर एक इंगित कर चेक कर दिए था माधुर्य उन्हें हानि बोलो ऐश्वर्य शक्ति ठाकुर जी और नहीं था ताको माने ना ठाक तो पहले नहीं था किंतु नौ लीला के अतिक्रम परे जे लीला का परे नौ लीला उत्तम जे लीला कहाँ के बोले माधु और ऐश्वर्य कहाँ के बोले नौ लीला के अतिक्रम परे तहाँ जो समस्त लीला नवीला जो मनुष्य नहीं कर सकता ऐसी लीला को जो करते हैं जो किसी के लिए संभव नहीं है उस लीला को नहीं करते हैं लीला स्वर्ग में दिखा दे। कृष्ण की समस्त जितने भी लीलाएं हैं आदि से अंत तक ये सभी ऐश्वर्य लीला है, ऐश्वर्य गोवर्धन को धारण किया गया ऐश्वर्य किंतु छोटे से बच्चे ने उठा करके रख लिया इसलिए माधुर्य दी और सब गोपी लोग देखते हैं छोटा सा गोपाल ये नहीं उठाया, उठाया किसने
नारायण
उठाया, बड़े बड़े जो वृद्ध है वो तो देख रहे हैं कि नारायण की कृपा से ये हो गया नारायण ने उठा दिया और सखा लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों ने उठा दिया
हम लटकिया से
इसलिए ये माधुर्य के लिए जाएंगे काली को दमन करना इस पर जरूरी है किंतु वो क्या देख रहे किसी छोटे के बच्चे के रूप में ही कृष्ण क्योंकि बदी हुई है उसमें मोर का पंख लगा हुआ है और बंसी यहीं पर लगा रखा और लेकर के सूख गए पीताम्बर भी यहाँ पर बांध रखा और उसी में नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर तो ऐश्वर्य नहीं जाते, किंतु ऐश्वर्य नहीं ना होने से क्या होगा, छोटे बच्चे के रूप में ही उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं और सभी लोग देखकर के अरे मरा 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 उसको बांध दिया है साथ में, इसलिए ऐश्वर्य। यहाँ पर भी जसोदा जी बांध रही है ऐश्वर्य लीला, महाश्चर्य लीला भी, किंतु अपने बच्चे के रूप को त्याग करने इसलिए ये माधुरी देवी है बांध नहीं पा रहे, इसलिए उनको याद आ गई, इसलिए ऐश्वर्य लीला नहीं हुई माधुरी कर, इसलिए उनको याद आई भक्ति भक्तम भक्ति के द्वारा मैं पढ़ सकता हूँ, जिसके हृदय में भक्ति है उसके द्वारा मैं पढ़ सकूँ। अरे नारद जी एक बार जा रहे थे कैलाश और रास्ते में शंकर जी के कृपा पात्र कुबेर जी के पुत्र मिले, एक जितना भी तुष्ट लड़का हो और हमारे मित्र का लड़का है तो क्या करेंगे, जितना भी दुष्ट है ना, देखो हमारा मित्र का लड़का कैसा था, ये सुधर जाता है तमाम दुष्ट छेले, किंतु हमारा यदि बंधु छेले पर তাহলে তাহার প্রতি একটা স্বভাব একটা প্রীতি থাকে দয়া থাকে। তো নারদ ঋষি যা রয়েছে রাস্তে যা রয়েছে শঙ্কর কে আর উসিকে পাশ মে কুবের জি কাজ আর উসিকে পাশ মে এক সুন্দর সরোবর ইয়ে দোনো মুখে লড়কে নলকুপা কর ধনিক বহুত হি খুবসূরত बहुत खूबसूरत गंधर्व है, खूब खूबसूरत विद्वान और धनवान, विश्व में सबसे बड़े कुबेर धनी के पुत्र, उनमें सब प्रकार का अभिमान, जन्म श्रुतर सी भी एक मान, जिनके अंदर में ये चार दुर्गुण होते हैं, जन्म उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य धन संपत्ति जिसको हो, जिसको विद्या का अभिमान है और जिसको रूप का अभिमान, किसी कोई गुण नहीं है, पढ़ा लिखी भी नहीं कोई लड़की है, किंतु बड़ी सुंदरी है, विश्व की प्रतियोगिता में वो विश्व में सबसे बड़ी विजेता बन गई, विश्व सुंदर, कोई गुण नहीं है, बस उसके मुस्कुराने पर ही जगत के लोग फिदा हो जाएंगे और बड़े बड़े धनवान लोग उसकी सेवा करने के लिए, बड़े बड़े सुंदर धनवान सब लोग, बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाएंगे, वहां पर भक्ति भी न जाने कहां चली जाती है, जो विद्वान बड़े बड़े लोग हैं उनको विद्या का बड़ा सा रहिए मान होता है, राजा नहीं सर्वत्र पूजित होता, विद्वान बड़े पूजित होते, जहां जाएंगे विद्या का ये उनको लोग पूजा करते, धनी में यदि वो धनी है काला कलूखा दांत इधर निकला हुआ तो अभी धन के बदले लाखों अस्पराओं को ले आएगा अपने और मदिरा इत्यादि करके जगत का ऐश्वर्य होगा, बड़े बड़े राजा यहां तक कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भी उसकी बात को सुनने के लिए बात समस्त मतों में धन मत सबसे बड़ा, आइए चारों मत उसमें तीसरे नंगे होकर के अस्पराओं के साथ में नृत्य कर रहे, मोहन पर गान कर रहे, मदिरा पान करके उसके साथ में व्यभिचार कर रहे। नारद जी जब वहां पर आए तो देखा, वो जानते हैं कि हमारे पिताजी के ये मित्र हैं और बड़े भाई समर्थमान ऋषि है, किंतु मदिरा पान के कारण और धर्म में मत होने के कारण, उच्च कुल में जन्म और विद्या चारों दोषों से युक्त होने के कारण परवाह नहीं किया और नंगी होकर के उन औरतों को जो कि निकल करके तालाब से सरोवर से नारद ऋषि को प्रणाम किया और झट अपने कपड़ों को पहन करके पेड़ के नीचे में छिप करके खड़ी हो और वो वहीं से गाली कर बलाव कर रहे हैं स्त्रियों को, और इनको जो कहाँ से ये बेहाया बदमाश इधर से आ रहा, और नारद जी को भी गाली देने लगा। नारद जी देखो तो सही, धन का इतना मत, रूप का इतना मत, ऐश्वर्य का इतना मत, और मदों का मत पी लिया, इसका मत जो किसी को अपने सामने नहीं समझता, अच्छा मैं दूर करूंगा। यदि किसी को कांटा नहीं अपना स्वयं गढ़ता, यदि कांटा ना फूटे, कांटा स्वयं नहीं गढ़ता तो दूसरे का कष्ट नहीं समझता। मछलियों को काट देगा, गाय को, जानवरों को काटेगा, और उसको थोड़ा मोटा सुई लेकर के घुसेड़ दो तो वो समझेगा हाय 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 मरा, या तलवार से उसकी कोई हाथ काट दो तो देखो जो क्या होगा। तो जब तक कि कष्ट अनुभव नहीं होता तब तक नहीं समझता है। अच्छा तो ठीक है, ये मत होकर के एकदम पाषाण जैसे जड़ हो गए हैं, पेड़ जैसे जड़ हो गए हैं, जाओ अभी तुरंत पेड़ होकर के जाओ, तुमको कोई लज्जा है बेहाय इत्यादि कुछ नहीं, बस जाओ और लाखों वर्षों तक ऐसे ही बने रहो। जब इस प्रकार से किया था तो झट उनका शरीर जड़ होने लगा और सत्य के पेड़ उसी समय में होने लगे। हम जैसे में जो किसी को गाली देंगे तो साथ ही साथ नारद जी और गुरुदार का साथ ही साथ हो गया, जबकि वो जड़ होने लगे तो उनके चरण में गिर गए, क्षमा कीजिए हम आपकी अवज्ञा, बहुत बड़ा भारी अपराध, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो जाओ तो मैंने कह दिया ये तो होगा ही, तो हमारे मित्र के लड़के हो, और साधुओं का बिगड़ना और प्रेम करना दोनों एक ही तात्पर्य होता है समझना। यदि गुरु किसी को प्रेम से किसी चीज को समझाता है तो भक्ति के लिए ही समझाता है, और यदि किसी पर बिगड़ता है, किसी को शासन करता है तो किस लिए,
अनुग्रह,
उसकी अनुग्रह है, उसकी भक्ति नष्ट न हो और भक्ति बढ़े इसलिए करता है। मूर्ख शिष्य नहीं समझता, मूर्ख लोग इस चीज को नहीं समझते, वो भी नहीं समझ सका जैसे नारद जी के इस क्रोध का खराब परिणाम होगा कि बुरा परिणाम होगा नहीं समझ सका। साधु संतों का क्रोध भी हमारे मंगल का है। कृष्ण उतना को मारा, अघासुर को मारा और सब राक्षसों को मारा, उसका क्या हुआ, कोई अमंगल हुआ। कंस को मारा, किसी को मुक्ति हुई, किसी को गोलोक में माता की गति मिली, किसी को शारुक मिली, किसी को कुछ मिल गया। इसलिए यदि क्रोध करके भी भगवान का स्मरण करता है, क्रोध रूप में भी, द्वेष से भी करता है, किसी रूप में भी करता है, किसी को कृष्ण का रूप देख करके और उसको कृष्ण से मिलने की लालसा हो गई, कृष्ण को भोग करने की, बड़ा सुंदर है कृष्ण, ये बुरा होगा नहीं होगा। यदि क्रोध से कंस ने और कृष्ण को मारने के लिए चिंता करता हुआ क्रोध किया तो उसका क्या हुआ, कृष्ण में निविष्ट हो गया तो क्या हो गया, मुक्ति मिल गई। उसी प्रकार से यदि कोई काम के द्वारा लालसा से वासना से भी कृष्ण का यदि स्मरण करे, कोई हर्ज नहीं, किंतु कृष्ण के प्रति हो तो उसका कल्याण ही होगा। इसके हजारों उदाहरण सब है, श्रीमद् भागवत में नारद जी ने बताया है, युधिष्ठिर जी महाराज काम से, क्रोध से, द्वेष से,
भय से,
भय से,
स्नेह से,
स्नेह से, किसी प्रकार से चित्त लगे। एक आदमी कृष्ण की क्रोध होकर के कर रहा है, नारद जी का क्रोध वैसा कैसा है, भक्तों के प्रति भी कोई दोष से, कोई क्रोध से, कोई किसी प्रकार से जाए तो सही, नलकुबार मानी गिर की दशा अभी संपात दिया, और जब रोने गिर गिड़ाने लगे तो अच्छा ठीक है, तुम्हारा जन्म दूसरी जगह नहीं गोकुल में होगा, द्वापर में कृष्ण का जन्म होगा, नंद हवेली के पास ही में दरवाजे पर तुम जमज वृक्ष के रूप में, जमल वृक्ष मने दो एक साथ के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, और कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे और उस समय क्या करेंगे, तुम्हारा यह भी संपात दूर हो जाएगा और साथ साथ प्रेम भाजन हो जाएगा। कुबेरा तथापि भक्ति प्रेम भाजन किया बोले पेड़ से निकल करके और कैसा के इसमें बतलाए। तो इसलिए कृष्ण को स्मरण पड़ा नारद के वचन को सत्य करने के सत्याभिधा तुम लीजिए भक्त प्रभाष भगवान अपनी प्रतिज्ञा याद नहीं रहती।